आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। सिडनी के एक कैफे में 18 बंधकों को 17 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखने वाले एक आतंकवादी को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारी ने अब 10 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। अधिकारी बेन बेसेंट की पहचान और सुरक्षा के लिए अदालत द्वारा लगाया गया गोपनीयता आदेश यानी सप्रेशन ऑर्डर अब एक दशक से अधिक समय के बाद हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने व्यक्तिगत रूप से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाला, हालांकि वे इसके बाद भी 6 साल तक पुलिस बल में बने रहे। घटना सिडनी के लिंड कैफे के अटैक की थी। चैनल 7 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD से जूझ रहे लोगों की मदद करना चाहते हैं। दूसरी ओर फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता और आर्थिक वृद्धि में मंदी ने फेडरल बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। कोषाध्यक्ष जल्द ही बजट पर मध्यवर्षीय अपडेट जारी करने वाले हैं, जिसमें अर्थशास्त्री मामूली सरप्लस की उम्मीद जता रहे हैं अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो। महंगाई, जनसंख्या और वेतन वृद्धि और उच्च कमोडिटी कीमतों ने अक्टूबर बजट के बाद से ट्रेजरी के अनुमानित कर संग्रह को $365 बिलियन से अधिक बढ़ा दिया है। डॉक्टर चामस का कहना है कि मध्यवर्षीय बजट यह दिखाएगा कि सरकार देश की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सक्षम रही है, लेकिन आगे की राह फिलहाल कठिन है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि उनकी सरकार एक प्रमुख चुनाव पूर्व वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई है, जिसका कारण बाहरी परिस्थितियां रही हैं। लेबर पार्टी ने 2025 तक सभी घरों के लिए बिजली के बिल में $2,075 तक की कमी लाने का वादा किया था। श्री अल्बनीजी का कहना है कि यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक समस्याओं ने इस योजना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक दबावों के बावजूद उनकी सरकार देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में सफल रही है। ये बयान विपक्ष की परमाणु ऊर्जा योजनाओं की घोषणा के बाद आया है, जिसे सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि इससे सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बिजली के बिलों में वृद्धि होगी। वहीं विपक्ष कोषाध्यक्ष एंगस टेलर ने रिजर्व बैंक के बोर्ड सदस्यों में किसी भी संभावित बदलाव को ब्याज दरों के फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास बताया है। RBA के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद सरकार ने ये सिफारिश स्वीकार की है कि 2 नए बोर्ड बनाए जाएं, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए और दूसरा दैनिक संचालन की निगरानी के लिए। विपक्ष ने शुरुआत में इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि वे प्रत्येक बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा करने के लिए लगभग तैयार हैं, जिसे उन्होंने क्रॉस बेंच के साथ साझा किया है। हालांकि विपक्ष कोषाध्यक्ष एंगस टेलर ने स्काई न्यूज से कहा कि निर्णय लेने वाले बोर्ड के सदस्य जैसे हैं वैसे ही बने रहने चाहिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने US नेटवर्क ABC न्यूज के साथ $23 मिलियन से अधिक के निपटान पर सहमति व्यक्त कर दी है। ये समझौता ABC न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफानोपोलिस द्वारा की गई गलत टिप्पणी के कारण लाए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में किया गया है। बिल क्लिंटन के पूर्व सलाहकार जॉर्ज स्टेफानोपोलिस ने मार्च में नेटवर्क पर एक साक्षात्कार के दौरान गलत तरीके से दावा किया था कि श्री ट्रंप को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्होंने उस बलात्कार की पीड़िता की मानहानि की थी। स्टेफानोपोलिस का यह बयान लेखिका ई जीन कैरोल के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाए गए नागरिक मामलों से संबंधित था, जिसमें श्री ट्रंप को बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। समझौते के तहत नेटवर्क डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पुस्तकालय के लिए $23 मिलियन का दान करेगा और उनके वकील एलेजांड्रो ब्रिटो के लिए अतिरिक्त $1.5 मिलियन की कानूनी फीस भी कवर करेगा। नेटवर्क ने अपनी वेबसाइट पर संपादक की ओर से एक नोट प्रकाशित किया है, जिसमें श्री स्टेफानोपोलिस द्वारा की गई टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया गया है। और अब खबरें भारत से। भारत में जारी किसान आंदोलन के दौरान किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच शनिवार को एक बार फिर टकराव हुआ। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। इस दौरान कुछ किसान घायल हो गए, जिसके बाद किसानों के दिल्ली मार्च को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान किया कि 16 मार्च को पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च होगा, तो 18 मार्च को 3 घंटे के लिए रेल जाम करेंगे। 101 किसानों के जत्थे ने शनिवार को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया। हालांकि कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद ही प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय अवरोधों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। जानकारी के मुताबिक आंसू गैस के गोले दागने से कुछ किसान घायल हो गए और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर खड़ी एम्बुलेंसों से नजदीकी अस्पतालों तक लेकर जाया गया। इसके बाद आज किसानों के इस जत्थे को वापस बुला लिया गया है। इसी के साथ 15 दिसंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृशाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।